साथियों नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुरकर। आज मोबाइल वाणी के मंच पर गांव आजीविका और हम विषय पर विशेषकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रूबरू होने जा रहे मोबाइल वाणी के नियमित श्रोता एवं आदर्श कृषक, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में नित नए नवाचार के प्रयोग सीखकर अपने स्वयं के खेत में 600 पपीता की नर्सरी तैयार की है, ऐसे एक किसान अमोल गुरु जी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। नमस्कार गुरु जी।
नमस्कार दिनकर जी, पातुकर जी नमस्कार। कैसे हो आप?
हम ठीक है। हम आपसे मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कि आपने आपके स्वयं के खेत में जो पपीता के 600 पौधे की नर्सरी तैयार कर पौधे का रोपण किया है, इसके लिए मानसून के पूर्व आपने खेत को किस तरह तैयार किया और इन पौधों का रोपण कैसे किया?
देखा जाए तो क्या है कि हम आज जो खेती कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें क्या है हम एक कृषि मंडी के आधार पे या फिर किसी दलाल के माध्यम से हम उस फसल को बेचते हैं, तो जिससे किसान को नुकसान होता है। तो हमने उस खेती को पहले किया था, लेकिन उस ट्रेडिंग फार्मिंग में हमको बहुत सारे दिक्कतें, बहुत सारे फसल में नुकसान दिखे और हमें जो उत्पादन आया उसमें भी बहुत सारे गिरावट दिखी, जिसके कारण मैंने जो फल की जो बगीचे की जो खेती है वो करना चालू किया। जैसे अभी पपीता की जो खेती है, कम से कम मैं 6 साल हो रहा है इस पपीता की खेती कर रहा हूँ, लेकिन पपीता की खेती के अंतर्गत मैं पंचस्तरीय खेती करता हूँ, जिसके अंतर्गत मैं पपीता लगाता हूँ। पपीता के बाद में जैसे उसमें मैं झंडू के झाड़ लगाता हूँ मैरीगोल्ड के, और मैरीगोल्ड की फसल निकलने के बाद मैं स्ट्रॉबेरी की फसल लगाता हूँ, और स्ट्रॉबेरी की फसल निकलने के बाद में जो गर्मी की जो सब्जी की भाजी की जो फसलें होती है मैं वो लगाता हूँ। इस प्रकार से पंचस्तरीय खेती के माध्यम से मैं अपनी जीविका जो होती है मुझे काफी उससे अर्निंग हो जाती है, और जो भी मैं अर्निंग करता हूँ वो और फार्मिंग करता हूँ वो शुद्ध जैविक खेती होती है, जिसमें मैं जीवामृत और पंचामृत दशपर्णी एसपी के मॉडल के आधार पर मैं जो खेती कर रहा हूँ। हमारे आदरणीय श्री पद्मश्री सुहास पालेकर गुरु जी है जो हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। एसपी के मॉडल के आधार पर हम खेती करते हैं, और आज देखा जाए कि हम हरित क्रांति की जैसे बात करते हैं कि उस समय में सरकार ने केमिकल्स और हाइब्रिड की जो उस समय में हमारे देश में संकट था, इसलिए अनाज संकट था, इसलिए उस खेती के बारे में उन्होंने प्रमोट किया। लेकिन आज समय बदल चुका है, लेकिन समय के अभाव से हमें भी जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, इसलिए हमारे आदरणीय पद्मश्री सुहास पालेकर गुरु जी के मैंने शिविर अटेंड किया, और जिसमें उन्होंने बताया कि आप जैविक खेती करेंगे आपका परिवार सुखी होगा, आप यदि आपका गांव सुखी होगा, गांव से आपका देश सुखी होगा। तो इस प्रकार से मैं उनका मार्गदर्शन सुन के मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। तो आज मैं अपने खेत में 500-600 पपीता के झाड़ लगाया है, और जिसके अंतर्गत में मैंने इंटरक्रॉपिंग के रूप में मैरीगोल्ड के फसल लगाया है।
गुरु जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पपीता के पौधे लगाने के पूर्व आपने खेत को किस तरह तैयार किया, और ये पपीता के जो पौधे का जो आपने एक नर्सरी के रूप में रोपण तैयार किया और उसके बाद में उसको लगवाया, तो आपने ये पौधे कहाँ से लाए और कितने एकड़ में इस पपीता के पौधे का रोपण आपने किया?
देखा जाए तो क्या होता है कि यह जो फसल होती है पपीता की, यह वर्ष में दो ही बार इसको लगाने से हमको मंडी के जो भाव होते हैं या हमारे जो मंडी अर्थात जो हमारे जो यानी मार्केट में जो भाव होते हैं, जो डिमांड जो होती है वो उस ऋतु के हिसाब से हम इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम गर्मी के समय में फरवरी में इसकी जुताई करती है कल्टीवेटर, या फिर हमारे पास जो देसी बैल होते हैं उससे हमको जुताई बखर हम करते हैं हल से, और उसके बाद में हम उसमें 6x3 पे हम या फिर 10x6 पे हम इसको लगाते हैं। 10x6 पे लगाने से ये होता है कि हम उसमें आंतरिक जो फसल होती है वो लगा सकते हैं, और जैसे हम उसमें हमारे पास बैल नहीं है तो हम छोटा ट्रैक्टर या ट्रैक्टर से हम उसके जुताई कर सकते हैं, और उसके बीच में हम इंटरक्रॉप कर सकते हैं जिसमें मैरीगोल्ड हो गया आपका या स्ट्रॉबेरी हो गया, इसीलिए मैंने 10x6 पे लगाया है। अन्यथा आप 6x4 पे भी लगा सकते हैं या फिर 5x4 पे भी लगा सकते हैं। पपीता में देखा जाए तो यह मूल रूप से यह दो प्रकार की इसमें होता है, जैसे एक होता है देसी बीज जो होता है, देसी बीज से है आप कर सकते हैं, या हाइब्रिड बीज आता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि आप नर्सरी अपने यहाँ पे तैयार भी कर सकते हैं, अन्यथा आप कोई नर्सरी से पौधा बुला सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने जो देसी बीज होता है उस हमारे पास समय नहीं होते हुए हमने नर्सरी को दिया और नर्सरी से हमने देसी पौधे बुलाए और 600 पौधे हमने प्लांटेशन किए मार्च में, जिसके अंतर्गत में हमने कुछ जैसे जो अमृत वगैरह हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, ये छोड़ा। और उसके बाद में जैसे अभी जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो उसमें 15 दिन में हम जीवामृत स्प्रे के माध्यम से देते हैं और ड्रिंचिंग में 15 दिन के माध्यम से हम उसमें जिसके रूट्स में हम देते हैं, जो बुड़ में जो होता है उसमें हम देते हैं, यानी अमावस्या पूर्णिमा जैसे होती है उसी 15-15 दिन के आधार पर उसमें स्प्रे और ड्रिंचिंग हम इसमें करते हैं।
गुरु जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपका खेत शायद सायरा पंचायत में अधीन आता है।
खेड़ी
में आता है, तो आपके खेत में पपीता लगाने के बाद आजू बाजू के किसानों का इस संबंध में क्या कहना है, उनकी क्या राय है?
देखा जाए तो अभी मैं 3 साल पीछे जाता हूँ, 3 साल पहले मैंने खेती लगाया था तो कुछ किसान मुझे बोल रहे थे आप ये गलत कर रहे हैं कि फसल लगा रहे हैं, पपीता में कोई फायदा नहीं होता, उसमें वायरस जाता है, बहुत सारी प्रकार के नकारात्मक मुझे लोगों की सोच का सामना करना पड़ा। लेकिन देखा जाए तो उस सोच का सामना करने के बाद भी मुझे संघर्ष का मुझे अपने सोच पे जाना था, उस संघर्ष को मैंने सामना किया। 6 महीने बाद जब उसकी उत्पादन आना चालू हुआ तो 3 साल तक कम से कम 5-6 लाख रुपए मुझे खाली एक फसल पे मुझे पपीता से मिला। बाकी जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग जैसे फूल की है जिससे मुझे 50-60 हजार रुपए मिले, उसके बाद में जैसे भी हम जो भी हमने फसल लगाया उसमें पंचस्तरीय मॉडल, उससे अलग 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 प्रकार के फसलें से मुझे फायदा मिला। और दूसरा देखा जाए तो इसमें यह है कि आप जैसे खेती करते हैं तो आप उसे बाजार में उसका हम जैसे बाजार में फल की दुकान होती है और बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनको देसी प्रकार का फल चाहिए और जैविक प्रकार का चाहिए, तो हम उनको सप्लाई करते हैं, इस प्रकार से हम इसमें कर रहे हैं।
गुरुवे जी, हम आपसे एक अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे, क्योंकि आप मोबाइल वाणी के नियमित श्रोता होने के साथ साथ मोबाइल वाणी के लिए आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के लिए रिपोर्टिंग का भी कार्य किया है और आपने नागपुर से इसकी ट्रेनिंग भी ली है पौधों के नर्सरी की, और मोबाइल वाणी भी एक अपना मोबाइल वाणी पर एक अलग अभियान चलाता है कृषि वाणी गांव आजीविका हम, तो मोबाइल वाणी आपके इस कार्य में कितनी सहायक सिद्ध हुई?
देखा जाए तो मैं मोबाइल वाणी से कम 7-8 साल से पहले जुड़ा हूँ और मोबाइल वाणी के ही माध्यम से मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली है, क्योंकि इसमें मोबाइल वाणी पे बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं जैसे कृषि वाणी है और बहुत सारे जो समाचार होते हैं, बहुत सारे इसमें जानकारियां प्रदान होती है। तो मैं 7 साल से मैं नियमित श्रोता हूँ मोबाइल वाणी का, और माननीय दिनकर जी जो है उन्होंने मुझे इस बारे में मुझे नंबर दिया था, साझा किया था, उसी माध्यम से मैं आज मोबाइल वाणी से 7 साल से जुड़ा हूँ। बहुत सारी जानकारी मुझे प्राप्त होती है और मैं इस जानकारी के माध्यम से कुछ प्रयोग अपने खेत में भी कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं अपने निजी जीवन में कुछ जो मेरे यहाँ पे जो खेती में जो विशेष जानकारी मोबाइल वाणी के कृषि वाणी से विशेषज्ञों द्वारा जानकारी होती है, तो उसी जानकारी को भी मैं अपने खेत में पौधों में या फिर जो भी जो चीज मैं पंचस्तरीय जो फसलें लगाता हूँ उसमें मैं उसको करता हूँ। इसके पहले मैंने जॉब किया, मैं नागपुर में जॉब किया था कंपनी में, तो मैंने वहाँ पे 5 साल जॉब किया, 5 साल के बाद ट्रेनिंग लिया, लेकिन मुझे लगा कि मैं आज नौकरी कर रहा हूँ कल भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन ये आर्थिक जो रूप है जैसे महंगाई बढ़ रही है इस महंगाई का सामना नहीं कर पा सकता हूँ मैं, इसलिए मैंने इस नौकरी को छोड़ा। उसके बाद में हमारे एक एक रिलेशनशिप वाले पटेल साहब थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप बोले हमारे यहाँ पे नर्सरी का काम कीजिए, उसमें हमें कुछ गाइडेंस कीजिए, तो मैंने उनके यहाँ पे 4 साल तक काम किया, लेकिन मुझे भी लगा कि वहाँ पे क्या है मेरा भविष्य, एक किसान के नाते मेरा भविष्य वहाँ पे सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, इसलिए मैंने अपना एक कदम उठाते हुए अपने खेती के तरफ में मैं रुझाव किया और अपने खेती के तरफ में मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मेरे यहाँ पे जो देखा जाए मेरे गांव में मैंने जब 3 साल पहले जब मैंने अपना बगीचा लगाया था तो यहाँ पे मुझे यानी मेरा बगीचा लगने के बाद में यहाँ पे कम से कम 4-5 लोगों ने पपीता का बगीचा लगाया और वो भी सक्सेस हुए है, उन्होंने कहा है कि हम भी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, अभी कुछ लोग तो कम से कम 2-2 हजार झाड़ लगा रहे हैं और अपनी जीविका यापन कर रहे हैं। मैं उनको सुझाव भी देता हूँ कि मोबाइल वाणी की जो कृषि वाणी होती है आप उस नंबर से मिस कॉल करके आप उससे जानकारी लेते, विशेष विशेषज्ञों का वहाँ पे मार्गदर्शन मिलता है, तो मैं उनको सुझाव भी देता हूँ कि आप मोबाइल वाणी से जुड़कर आप यह कृषि वाणी का फायदा ले सकते हैं, विशेषज्ञ फायदा ले सकते हैं और बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है तो आप उससे ले सकते हैं, क्योंकि किसी किसी के पास समय नहीं होता सौसर में जाने का, छिंदवाड़ा जाने का, कृषि अधिकारी से बात करने का, उनके पास नंबर भी नहीं होता, लेकिन यह नंबर ऐसा है मोबाइल वाणी का जिसके माध्यम से आप आपको फ्री जानकारी मिलती है और आपको एक मिस कॉल करना पड़ता है ताकि आपको पूरा जानकारी आपको मोबाइल से मिल जाती है।
गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मोबाइल आने के एक नियमित श्रोता होने के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में आपने एक लंबे समय तक नौकरी की और नौकरी छोड़कर आप स्वयं कृषि की ओर बढ़े और नवाचार किया, इसलिए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से जुड़कर आज मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए अपने अनुभव साझा किए।
धन्यवाद दिनकर जी, धन्यवाद।